नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की कई सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली में राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना आधार बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। केंद्र ने देश में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता का आश्वासन दिया। लोगों से एलपीजी सिलेंडरों की जल्दबाजी में बुकिंग न करने का आग्रह किया। 92,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ दो भारतीय जहाजों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। उनके सोमवार और मंगलवार को गुजरात पहुंचने की उम्मीद। पश्चिम एशिया संघर्ष के तीसरे सप्ताह में अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर बड़ा हमला किया। नई दिल्ली में कल संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत 75 स्वर्ण सहित कुल 208 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर, और बैंकॉक में विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में चार युवा भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 420 किलोमीटर से अधिक की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, जहाजरानी और बंदरगाह संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगी।
ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी।
श्री मोदी ने पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 6 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ भी किया। श्री मोदी ने कहा कि कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह लंबे समय से पूर्वी भारत के प्रमुख व्यापार केंद्र रहे हैं।
हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, इसका मशीनीकरण हो रहा है। इससे कार्गो ऑपरेशन और तेज होगा, बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार के लिए नई सुविधाएं तैयार होगी। कोलकाता डॉक सिस्टम में बास्कुल ब्रिज का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही महाजंगल राज खत्म हो जाएगा।
बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है।
इसके बाद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली में राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना आधार बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों को बंगाल के अस्तित्व और उसकी आत्मा की रक्षा की लड़ाई बताया। श्री मोदी ने सांप्रदायिक समीकरणों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए उन्हें असंवैधानिक और निंदनीय बताया। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पंजाब के मोगा जिले से विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी अभियान की शुरूआत की। किल्ली चहलान गांव में बदलाव रैली में उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो 2 साल के भीतर राज्य को नशा मुक्त कर देगी और धर्मांतरण को कानूनी रूप से खत्म कर देगी।
पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय ध्वज वाले दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने आज तड़के होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी।
इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया है कि किसी भी खुदरा दुकान या वितरक के पास एलपीजी की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। संयुक्त सचिव ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग न करने और जरूरत पड़ने पर डिजिटल बुकिंग करने का आग्रह किया है।
लास्ट डिलीवरी से नेक्स्ट बुकिंग के बीच में अर्बन एरिया में मिनिमम 25 डेज का गैप है और रूरल एरियाज में जो 45 दिन का है। सभी देशवासियों से एक अपील है कि कृपया डिजिटल जो बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज करें। कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले।
सुश्री शर्मा ने बताया कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक सिलेंडरों का वितरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय में खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम महाजन ने बताया कि अब तक पश्चिम एशिया क्षेत्र से करीब 2.25 लाख भारतीय नागरिक स्वदेश लौट चुके हैं।
उड़ान की स्थिति और हवाई क्षेत्र की बात करें तो 28 फरवरी के बाद से लगभग 1,72,000 यात्री भारत लौट चुके हैं और भारत के विभिन्न हवाई अड्डों के अधिक उड़ानों से जुड़ने से हवाई संपर्क लगातार बेहतर हो रहा है। ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर से उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आने वाले खरीफ मौसम के लिए देश में यूरिया का भंडार पिछले साल की तुलना में अधिक है।
फर्टिलाइजर की जहां तक सवाल है, देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले कई एक महीनों के लिए हमारे पास पर्याप्त उर्वरक है और देश की खाद्य सुरक्षा को एक पुख्ते ढंग से हम उसको आगे ले जाएंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को खुले या अनुपयुक्त कंटेनरों में ईंधन न लेने और उसका भंडारण न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के तीसरे सप्ताह में अमरीका ने ईरान के कच्चे तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सेना ने द्वीप पर कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया लेकिन तेल ढांचे पर हमला नहीं किया। ईरान ने अभी तक नुकसान का कोई विस्तृत आकलन जारी नहीं किया है। अफगानिस्तान की सेना ने ड्यूरन रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के हमले के जवाब में की गई है। इसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं जबकि 11 घायल हुए हैं। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है। इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हुई और अवसंरचनाओं को नुकसान भी हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पंजाब में आईएसआई प्रायोजित आतंक और सीमा पार हथियारों के एक तस्करी मॉड्यूल के 2 लोगों को पुलिस ने अमृतसर में गिरफ्तार किया है। इनके पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। राज्य में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशी हैंडलर्स ने पाकिस्तान के जरिए हथियारों की खेप भेजी थी। ये मॉड्यूल भारत विरोधी प्रचार करने और कट्टरपंथवाद में संलिप्त था। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। दोनों पर 12 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान के दूसरे चरण के तहत 3 महीनों में लगभग 18 लाख नए आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। राज्य सरकार के विशेष अभियान के पहले चरण में पिछले साल दिसंबर तक 55 लाख कार्ड जारी किए गए थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर ई अभियान के अंतर्गत करदाताओं को भेजे गए कुछ ईमेल संदेशों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि तकनीकी त्रुटि की वजह से कुछ करदाताओं को ऐसे ईमेल मिले हैं जिनमें महत्वपूर्ण लेन देन के गलत विवरण दर्ज थे। ऐसे करदाताओं से पिछले ईमेल को अनदेखा करने का अनुरोध किया गया है। नई दिल्ली में कल संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत 75 स्वर्ण सहित कुल 208 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता में 8 देशों के 257 एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारत ने 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक जीते हैं। 4 भारतीय मुक्केबाज बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप के फाइनल में पहुंच गए हैं। इनमें चंद्रिका गुंजन, जॉयश्री देवी और अंबेडकर मितेई शामिल हैं। चारों ने सेमीफाइनल में आसान जीत दर्ज की। महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच जारी है। तीसरे क्वार्टर तक इंग्लैंड ने 2-0 से बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने कल चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली में गरज चमक और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की कई सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कोलकाता में एक रैली में राज्य की तृणमूल कांग्रेस पर अपना आधार बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। केंद्र ने देश में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। लोगों से एलपीजी सिलेंडर्स की जल्दबाजी में बुकिंग न करने का आग्रह किया है। और 92,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ 2 भारतीय जहाजों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।